ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंध अध्याय 14 अध्याय का नाम है विश्व व्यवस्था की पद्धति और श्लोक संख्या 9, 10, 11। तो श्लोक संख्या 9 मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें बताया गया है कि भगवान प्रजापति मरीच के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं, राजा का रूप धारण करके वे चोर वचकों का वध करते हैं और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने गुण हैं उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। सर्गम प्रजय सर्वोपेण दस्योन्हन्यासुरान् वपुः काल रूपेण सर्वेषां अभावाय पृथं गुणः। तो यहाँ पर 9वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्गम प्रजय सर्वोपेण कि भगवान सृष्टि करते हैं तो किस रूप में, प्रजापतियों के रूप में सृष्टि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। रजोगुण भगवान रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो प्रजापतियों के रूप में सृष्टि उत्पन्न करते हैं। फिर दर्शन हन्या सुराट बहु फिर राजा के रूप में सत्वगुण को स्वीकार करके भगवान राजाओं के रूप में दर्शन हन्या जो चोर उचक्के हैं उनका वध करते हैं, सत्वगुण का कार्य पालन। तो भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, राजाओं के रूप में चोर उचक्कों का वध करते हैं। फिर काल रूपेण सर्वेषां अभावाय फिर प्रलय करने के लिए तमोगुण को स्वीकार करते हैं काल रूप में, क्या करते हैं सर्वेषां अभावाय सबका विनाश करने के लिए काल रूप धारण करते हैं, तमोगुण को स्वीकार करते हैं अभावाय पृथक गुण। तो भगवान में भगवान तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, रजोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि करने के लिए और प्रजापतियों के रूप में सृष्टि उत्पन्न करते हैं। फिर सत्वगुण को स्वीकार करते हैं पालन करने के लिए राजाओं के रूप में राजर्षियों के रूप में चोर चक्कों का वध करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हैं विनाश करने के लिए तो काल के रूप में सबका विनाश करते हैं। तो भगवान ये जो है पृथक गुण ये जो है तीन गुणों को भगवान स्वीकार करते हैं। अब श्लोक संख्या 10 मेरे पीछे बोलेंगे स्तूयमानो जनरेभ्य मायानाम रूपयां विमोहितात्मभिर्नानां दर्शनैर्नाच दृश्यते स्तूयमानो जनरेभ्य। स्तूयमानः ढूंढे जाने पर जनः सामान्य लोगों द्वारा ए भी उन सब के द्वारा माया के वशीभूत नाम रूपया विभिन्न नामों तथा रूपों से युक्त विमोहित मोहग्रस्त हुआ आत्मा भी भ्रम द्वारा नाना विविध दर्शन है दार्शनिक विचारों से नहीं च तथा दृश्यते भगवान को पाया जा सकता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं अतएव वे परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं। किंतु उतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों पर विचार करेंगे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स्तूयमानो जनहरे भी, कि इन लोगों के द्वारा भगवान स्तूयमान होते हैं। स्तूयमान यहाँ पर बताया खोज जाते हैं, तो इन लोगों के द्वारा भगवान खोजे जाते हैं, भगवान को खोजते हैं लोग। तो ये भी क्या होता है, इन लोगों के द्वारा यहाँ भौतिक जगत के जो जीव हैं तो उनके लिए कहा गया है कि इनके द्वारा भगवान खोजे जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन में कुछ जानने का प्रयास करता है, सृष्टि का उद्गम क्या है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो माया नाम रूपया विमोहितात्मा, माया के नाम रूपों के द्वारा चूंकि वह विमोहित आत्मा है, उनकी बुद्धि विमोहित है, माया के नाम रूपों के द्वारा उनकी बुद्धि विमोहित है, तो उनकी बुद्धि माया के नाम रूपों से ऊपर उठ नहीं सकती। तो माया के नाम रूपों में ही वो क्या करते हैं, खोजते हैं परम सत्य को। तो परम सत्य तो माया से ऊपर है, परम सत्य तो माया से ऊपर है, लेकिन चूंकि वो माया में बंधे हुए हैं तो माया के ही नाम रूपों के द्वारा वे परम सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं। तो नाना दर्शन में नाना सिद्धांतों के द्वारा वे खोजने का प्रयास करते हैं, नाना सिद्धांतों नाना प्रकार के सिद्धांतों द्वारा खोजने का प्रयास करते हैं। दर्शन न चतृश्यते, परंतु उनको भगवान नहीं दिखाई देते। तो भगवान की अपनी प्रसन्नता होती है कि वे दिखाई दें या ना दिखाई दें। तो आप जो है अपनी खोजों के द्वारा और माया के नाम और रूपों के अंदर अगर आप भगवान को खोज रहे हैं तो भगवान भगवान नहीं बंधे हुए हैं कि वे आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि भगवान जड़ वस्तु नहीं है ना। तो जड़ वस्तु में ही जो है वे भगवान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन तथा संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार्य घटित होते हैं वे वास्तव में एक परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं ना। तो भगवान करा रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं, भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं और भगवान सृष्टि का संहार भी कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वे माया के ही अंदर हैं और भगवान माया से बाहर हैं। तो भगवान माया से बाहर रह करके सृष्टि पालन संहार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन माया के अंदर जितने जीव हैं ये भगवान को नहीं समझ पाते हैं। वे केवल खोजें करते रहते हैं, ये खोजें करते रहते हैं और माया के नाम रूपों के अंदर ही खोज करते रहते हैं, है ना। तो आगे तो पढ़ लेते हैं, ऐसे नाना प्रकार के दार्शनिक हैं जो परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों तथा रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन भगवान कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं जो भगवद गीता में ये बताते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभु, गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभु, है ना। तो वे नहीं जान सकते, भगवान को जानने की विधि प्रयोगों के द्वारा नहीं हो सकती। आप प्रयोगों के द्वारा किसी चीज़ को जान सकते हैं, जैसे मोबाइल है ना, जिसको जानते हैं और बनाते हैं, है ना, इसमें और भी कई तरह के सुधार करते हैं और कई तरह की इसमें उन्नति करते हैं। तो इस जड़ वस्तु में वे जो है प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान बढ़ाते जाते हैं। तो जड़ वस्तु का ज्ञान तो वे बढ़ा सकते हैं और जड़ वस्तुओं में उनके ज्ञान के बहुत से विभाग हैं, लेकिन सब ये जड़ वस्तु का है ना। तो प्रयोग के द्वारा वे जो है हर चीज़ को जो है देखते हैं, उसमें आवाज़ सुनते हैं, स्पर्श करते हैं और उनकी जो है अनुभूति प्राप्त करते हैं। लेकिन आप प्रयोग के द्वारा आप भगवान के अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान आपकी पकड़ में नहीं आएंगे। जैसे जड़ वस्तु है, कोई भी जड़ वस्तु है, तो मैं उसको जैसे चाहूँ ऐसे पकड़ लूँ और जहाँ चाहूँ रखूँ, जहाँ चाहूँ उठाऊँ, तो इसका तो अध्ययन मैं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन चेतन वस्तु का अध्ययन मैं नहीं कर सकता, है ना। जैसे हमसे कोई बहुत ज़्यादा बलवान व्यक्ति है तो मैं उसको नहीं पकड़ सकता कि उसका अध्ययन करूँ मैं, उसकी इच्छा के बिना मैं उसको नहीं पकड़ सकता। जमीन के अंदर क्या है तो वो खुदाई करते हैं और कई प्रकार की मशीनों के द्वारा तो जानने की कोशिश करते हैं जमीन के अंदर क्या है, और जान लेते हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर क्या है। तो अपने जड़ वस्तु के ज्ञान के द्वारा वे इन चीज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि उनका नियंत्रण होता है इन चीज़ों में, जड़ वस्तु के ऊपर नियंत्रण होता है। इन चेतन वस्तु के ऊपर जो अपने से ऊपर हैं, अपने से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनको हम अध्ययन नहीं कर सकते, उनको हम नहीं पकड़ सकते, उनको नहीं देख सकते। उनको तो जो है हमें भक्ति के द्वारा ही, भक्त्याहम एकयाग्राया, तो भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान ग्रहण किए जाते हैं। और भक्ति के द्वारा जो भक्त हैं वो भगवान को छूते हैं, पकड़ते हैं और उनके साथ खेलते हैं, उनके कंधे में चढ़ते हैं, तो सब प्रकार के जो है वो प्रयोग कर सकते हैं भगवान के साथ, तो भगवान रस में हो जाते हैं। जैसे कि करताल मेरे बस में, जब चाहूँ तो मैं इसको उठा लो, जब चाहूँ तो रख लो, तो इसी प्रकार से भगवान भक्ति के इस प्रकार से बस में होते हैं कि भक्त जब चाहें तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे उनके साथ सब प्रकार के व्यवहार कर सकते हैं। तो भगवान वशीभूत हो जाते हैं भक्ति के। नहीं, भक्ति के बिना आपके जो भौतिक प्रयोग हैं तो इसके द्वारा आप भगवान को कुछ भी नहीं समझ सकते, है ना। जैसे ब्रह्म सीता में कहा है ना, ब्रह्मा जी ने कहा है, वायु रथा कि मनुष्य मुनि पुंगवाना, वायु की गति से या मन की गति से भी कोई चले, कोटि सतकोटि वत्सर संप्रगम वे हो, सतकोटि 100 करोड़ सालों तक भी मन की गति से चले, कोई वायु की गति से चले, तो भी जो है उनके पैर के अंगूठे का भी वो दर्शन नहीं कर सकते। तो कोई व्यक्ति जो है अपने प्रयोगों के द्वारा, वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाल लिखते हैं आगे, ही असमर्थता भगवान की माया के कारण है, अतएव भक्तगण भगवान व्यथा रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की महिमाओं का कीर्तन करने मात्र से सुखी रहते हैं। यहाँ अंतिम जो है प्रभुपाद का जो निष्कर्ष है बहुत ही श्रेष्ठ निष्कर्ष है, अतएव भक्तगण भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं। भक्तगण भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं, यथारूप का मतलब जो हमें संदेश मिला है भगवान उसी में हम स्वीकार करते हैं। तो हम भगवान को अपने प्रयासों से जानने का प्रयास नहीं करते, अपने प्रयासों से हम भगवान को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, यथारूप जो भगवान ने कहा है और परंपरा के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है तो हम यथारूप में स्वीकार करते हैं। उसमें हम ये नहीं कहते नहीं नहीं हम इसकी परीक्षा करेंगे कि ये सही है या नहीं है, कहाँ तक सही है, तो यहाँ पर ये नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में जैसे वैज्ञानिक लोग हैं वो परीक्षण करेंगे कि कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, किसी का बुखार है कितना डिग्री है, तो जो है कोई बताता है तो कहते नहीं हम प्रयोग करेंगे कितने डिग्री बुखार है नापेंगे, है ना, यहाँ का पानी कितना गहरा है तो नापेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की बात कहाँ तक सच्ची है तो भक्त लोग जो है प्रयास नहीं करते थे कहाँ तक सही है, भगवान ने जो कहा है कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है हम जानने का प्रयास करें, तो ये नहीं है, यथारूप में स्वीकार करते। प्रभुपाद ये कह रहे हैं इसमें ये नहीं है कि नहीं कुछ सही है कुछ गलत है, गीता में भगवान ने कहा है, तो बहुत सी बातें सही हैं। कोई कहता है, लोग कहते हैं गीता में भगवान ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं। तो लगता है भाई बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, गीता में भगवान ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। तो बहुत अच्छी बातें कही हैं तो इसमें कोई बात जो है गलत भी है क्या, कोई बात अच्छी नहीं है क्या? गीता में भगवान ने बहुत सी अच्छी बातें कही। तो भक्त लोग जो है ऐसे नहीं है, क्या भगवान को यथारूप स्वीकार करते हैं, यथारूप स्वीकार करते हैं। अगर भगवान ने गीता में कुछ कहा है तो इसमें कुछ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उल्टा हो। सब कुछ जो है जो कुछ कृष्ण कहते हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा है एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम मृतो अन्यथा। तो इतना सब ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है, तो फिर कोई विवाद ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास कोई विवाद ही नहीं, जो कृष्ण ने कहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो हमारे पास तो इसको कहा है, यहाँ कहते हैं भक्तगण भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं। तो इसमें कुछ फेर बदल नहीं करते कि भाई पहले कहा था भगवान ने, अब जो है कुछ है, उसमें और सुधार हुआ है, अब हम और सुधार करेंगे। अब आजकल की वैज्ञानिक खोजों के द्वारा कुछ और जानकारी मिली है, तो भगवान के जो है शब्दों में हम कुछ और सुधार करें, कुछ और आगे की बातें बताएं। गीता में भगवान ने बोली उस समय के लिए बोली थी, तो ऐसा नहीं है। आज के विज्ञान में थी पहले का विज्ञान, 10 साल पहले का विज्ञान जो था अब जो है वो बदल चुका है। अब 10 साल पहले की जो आप पुस्तकें पढ़ेंगे विज्ञान की तो वो फिर जो है नहीं माने हैं, बदल चुका है, बहुत से सिद्धांत बदल चुके हैं। तो नई नई खोजें होती हैं और उनके जो है नए नए निष्कर्ष निकलते रहते हैं। कोई दवाई जो पहले खूब चल रही थी सही है दवाई, फिर बाद में पता चलता है इसमें भी कुछ है दोष है, इसमें भी कुछ नुकसान हो रहा है, उसको फिर छोड़ करके और दवाइयाँ निकाल रहे हैं और दवाइयाँ। तो ये विज्ञान नहीं है, ये असली विज्ञान नहीं है। आज का जो विज्ञान है वो विज्ञान असली विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो ये होता है कि जो पहले था वो अभी भी है और आगे भी रहेगा, कभी बदल नहीं सकता, वो विज्ञान है। तो भगवद गीता एक विज्ञान है, भगवान के शब्द यथारूप में स्वीकार कर, इसलिए प्रभुपाद ने दिया भगवद्गीता यथारूप। तो भगवद्गीता यथारूप हमेशा थी और अभी है और हमेशा रहेगी। इसमें कुछ ये नहीं है कि भाई पहले भगवान ने कुछ कहा था है ना, अब जो है कुछ और ज़्यादा खोजें हो चुकी हैं है ना, इसलिए हम जो है अब और आगे बढ़ चुके हैं। भगवान ने जो कहा उससे भी ज़्यादा हम जान सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हम आज के प्रयोगों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब वो जो है क्या बोलते हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, आउटडेटेड। तो पिछली बातें हैं, तो ये सब पिछली बातें हैं। हरे कृष्ण वाले जो है बहुत पिछड़े लोग हैं, क्योंकि वो जो है प्राचीन काल की जो गीता है उसी को स्वीकार कर रहे हैं, उसी को ही पकड़े हुए हैं और लकीर के फकीर बने हुए हैं। और हम बहुत आगे बढ़ गए, आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है, भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है शाश्वतम है ना, भगवान कहते हैं इमं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान अहम अभ्ययम। तो ये योग जो है मैंने सूर्यदेव को कहा था अव्यय है, अविनाशी है, अव्यय अविनाशी है। तो इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बाद में जो है छोड़ी जाए और कुछ जोड़ी जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया। यहाँ जो प्रभुपाद कहते हैं कि अरे भक्तगण भगवान को यथारूप में स्वीकार करते हैं, कि आप भगवान को और किसी प्रकार से नहीं जान सकते हैं, केवल समर्पण के द्वारा ही जान सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, ये जो विज्ञान है आपको समर्पण के द्वारा और सेवा के द्वारा और प्रश्नों के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए प्रयोग नहीं है कि प्रयोग करेंगे हम प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे। तो भगवान ने जो कहा है
शरीर के अंदर जीव आत्मा है वो अविनाशी है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। और भगवान अगर बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट आप करो इस प्रकार से, अपनी बुद्धि से ही प्रयोग करो समझने के लिए। देह उसमें था, देह कुमारम योग मंदरा, कि जैसे देह में कुमार अवस्था है और युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, तथा देहांतर प्राप्त है, उसी प्रकार से दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। धीरस्त प्रणमय, तो जो बुद्धिमान है इसमें भ्रमित नहीं होता। तो बिल्कुल सरलता से भगवान ने बता दिया, दूसरा शरीर भी उसी प्रकार प्राप्त होगा। और आप वही, जैसे कि बचपन में आपका शरीर दूसरा ही था और अभी शरीर दूसरा है, लेकिन आप तो वही हैं जो बचपन में थे। आप क्या कहते हैं, मैं वही हूँ, है ना? 20 साल पहले का चित्र आप देखते हैं अपने बचपन का, तो आप क्या कहते हैं, मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। तो वो मैं जो है नहीं बदल रहा है, जबकि शरीर बदल गया है। और 20 साल के बाद भी आपका शरीर बिल्कुल बदल जाएगा है? और आप कहेंगे मैं यही मैं हूँ। तो चूंकि आप नहीं बदल रहे हैं और शरीर बदल रहा है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से मृत्यु के बाद भी दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, तो इसमें क्या दिक्कत है समझने में कि मैं नहीं रहूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसके लिए प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं वही हूं या नहीं हूं। भाई प्रयोग करो, मैं वही हूं कि नहीं, इसमें कोई प्रयोग नहीं। यथारूप में है तो यथारूप में स्वीकार करते हैं तो बिल्कुल सरल, सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है। कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है, और कुटिल के लिए जटिल है। कुटिल व्यक्ति होता है तो सोचता है कि भगवान ने कुछ जो है कुछ सही बोला है, कुछ सही नहीं बोला है, मैं चेक करूँगा, मैं पता रहूँगा। कुटिल जटिल हो जाएगा तो समझ नहीं पाएगा, किसी जन्म में भी नहीं समझ पाएगा भगवद्गीता को। तो इसलिए सबसे अच्छी विधि प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद जो है संपूर्ण जगत के गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा, यथारूप। भगवान ने कहा उसको उसी प्रकार से स्वीकार करो, और फिर प्रश्न भी करना, प्रश्न भी करना, लेकिन चुनौती पूर्ण ढंग से प्रश्न नहीं करना है। किस प्रकार से प्रश्न करना है, विनम्रता पूर्वक सेवा के साथ में, समर्पण के साथ में प्रश्न करना, प्रश्न जरूर करना, यानी कि प्रश्न नहीं करना है? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रश्न के लिए ही मना करते हैं कि नहीं प्रश्न नहीं करना चाहिए है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने प्रश्न किया है? तुम प्रश्न बनाते हो, हमारे प्रवचन में तुम प्रश्न बनाते हो, तो ऐसा भी नहीं है। प्रश्न जरूर करिए, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने की विधि यही है कि आप प्रश्न करिए। तो प्रश्न भी करना है, लेकिन चुनौती नहीं देना, चैलेंज नहीं करना कि मैं प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे, आप कैसे जवाब देते हो। ये तरीका नहीं है प्रश्न करने का, कि उसको नीचे दिखाने की आप प्रश्न कर रहे हैं, नहीं। तो यथारूप में स्वीकार करना है हमें, प्रश्न करना है, किस भाव से प्रश्न करना है कि मेरा जो अज्ञान है वो दूर हो और इस प्रश्न का उत्तर मुझे जो है, मतलब प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है जो कि मैं पाना चाहता हूँ। तो ये जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया, ये तन्मय संशय कृष्ण छेद तुम रहस्य शेषता, कि हे कृष्ण मेरे संशय का छेदन करने मैं आप ही समर्थ हैं, कि पूरी तरह से मेरा संशय छेदन हो सकता है आपके द्वारा। तो धन्यहा संशय छेदता ना है प्रवृत्ति, आपके सिवा कोई इस संशय को दूर करने वाला नहीं है। तो अर्जुन ने मतलब इस तरह से प्रश्न नहीं किया कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, आप वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा कि मैंने 12 करोड़ साल पहले सूर्य को उपदेश दिया, तो अर्जुन ये प्रश्न करते कि आपका जन्म तो मेरे साथ ही हुआ है, मेरे जैसे उम्र के आप हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हैं, और 12 करोड़ साल पहले आपने सूर्य को कैसे दिया, क्या मुझे मूर्ख बना रहे हैं आप? अर्जुन ये नहीं कहा कि मुझे आप मूर्ख बना रहे, नहीं ये नहीं कहा, क्या कहा, अपरम भवतो जन्म, भवतो यानी आपका जन्म, आपका जन्म जो है अपरम है यानी अभी का है, परम जन्म व्यवस्था, और सूर्य का जन्म 12 करोड़ साल पहले का है, बहुत प्राचीन है। कथम ये तद जान गया, तो मैं कैसे जानूं? तो माधव प्रोक्त माने कि आपने वो समय उपदेश दिया तो मैं कैसे जानूं? तो अर्जुन ने मतलब अर्जुन जानना चाहते हैं, निष्कर्ष निकालने कि आपने जो बोला वो गलत है, ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, ये नहीं कहा। अर्जुन ने क्या कहा, मैं कैसे जानूं? कथम ये तद जान याम, तो माधव प्रोक्त कि आपने पहले ये बोला था, उपदेश दिया। तो प्रश्न करने का एक तरीका है कि मैं कैसे जानूं, ये नहीं है कि मैं जानता हूं आप नहीं जानते, ऐसा नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप तो अभी के पैदा हुए हैं, मेरे साथ मेरे सामने पैदा हुए, और आप बोल रहे हैं कि 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं, चुनौती नहीं दिया अर्जुन ने, मैं कैसे जानूं? तो इस तरह के अर्जुन के जो है जैसे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बताया गया है कि माया के अंदर ही, माया के नाम रूप के अंदर ही जो है हम लोग हैं, और भगवान को अगर खोजेंगे माया के नाम रूपों के अंदर तो हम नहीं खोज सकते हैं। अगर खोजने का प्रयास करेंगे तो उसी प्रकार से हम असफल होंगे, जैसे कुएं के अंदर मेंढक है, कुएं के अंदर मेंढक होता है तो उतना ही देख सकता है, पानी जितना कुएं के अंदर है उसी को ही वो मानता है कि भाई इतनी दुनिया है और मैं जानता हूँ इतनी दुनिया है, इतनी ही दुनिया है, मैं जानता हूँ उसकी दुनिया इतनी ही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कूप मंडू, कुएं का मेंढक, वो कुएं से बाहर आ भी नहीं सकता, कुएं से बाहर जा भी नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता कुएं के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, वो कुएं को ही दुनिया समझता है ना। तो माया के नाम रूपों के अंदर ही जो है जो वैज्ञानिक लोग हैं वो खोजने का प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक लोग जो है अटकलबाजी करते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, तो अटकलें लगाते हैं, एक बहुत बड़ा पिंड था और उसमें विस्फोट हो गया, उसी विस्फोट से बन गया सब कुछ बन गया, तो मूर्खता है ना। पहले कोई नहीं था, उनको अभी अपने बारे में पता नहीं है कि हम जो है हमेशा रहे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, अपने बारे में पता नहीं, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान जैसे सनातन है जीव भी सनातन है उसी प्रकार से हम शरीर बदल रहे हैं, तो इतना विज्ञान ने उन्नति की है, लेकिन वो शरीर से भी बाहर वो अपने को नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर हम शरीर नहीं है, वो शरीर बदल रहा है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रारंभ है, आध्यात्मिक ज्ञान की का जो है प्रारंभ में भी वो नहीं पहुंच पाए, और प्रभुपाद इसी बात पर ही उनको चुनौती देते हैं, कृष्ण धामनामृत की बात तो बहुत दूर है, कृष्ण के बारे में उन्होंने क्या बताया, कृष्ण की बात तो बहुत दूर है, आप हमने को नहीं जानते कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर बदल रहे हैं, और कठोरता से चुनौती देते हैं प्रभुपाद। तो ये जो आंदोलन है ये इस प्रकार का आंदोलन है कि जहाँ हम जो है इन सिद्धांतों में बहुत जो है कठोरता से जो है इन सिद्धांतों का पालन करते हैं और इनको प्रस्तुत भी करते हैं। ये जो सिद्धांत है हम बड़ी कठोरता से प्रस्तुत करते हैं। वो ये आधार है, कृष्ण भावनामृत का आधार है। आधार के बिना आप भवन नहीं तैयार कर सकते हैं, और भवन तैयार करेंगे तो ध्वस्त हो जाएगा, नींव आपने बनाई नहीं अच्छी तरह से। इसलिए नींव कृष्ण भावनामृत की नींव है, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आप शरीर नहीं हैं, हम शरीर बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे हैं। तो यहाँ अगले श्लोक में अब ये कहा गया है, एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के दिन में कई परिवर्तन होते हैं। अच्छा, इसका जो है हिंदी पद्य अनुवाद भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, विष्णु प्रिया ने लिखा है। नाम और रूप की माया से बुद्धि भ्रमित हुई जीवों की भांति भांति के दर्शन शास्त्र में है सदा पड़ी रहती है। वास्तव में सबके राही वे महिमा प्रभु की ही गाएं, पर उनका वास्तविक स्वरूप वे जान ही ना पाएं। अब श्लोक संख्या 11 ये यहाँ अध्याय समाप्त हो जाता है, और भागवतम का मेरे ख्याल से सबसे छोटा अध्याय यही है, 11 श्लोकों का अध्याय है ये। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजन, मैं सबका वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, विश्वास पूर्वक जान लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन होते हैं। ये तत्कल्प कल्पस प्रमाणम परिकीर्ति मन्मांतरण्याहोर चतुर्दश पुरा विदहा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत विश्व व्यवस्था की पद्धति नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसमें पुष्पिका अध्याय की जो पुष्पिका है ये संस्कृत में इस प्रकार है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे मन्वंतरानुवर्णने चतुर्दशोध्याया। तो मेरा सुझाव है कि ये संस्कृत की जो पुस्तिका है ये हर अध्याय के बाद में जोड़ी जाए। भगवद्गीता के भी अध्याय में पुस्तिका होती है, तो वो हमारे पुस्तकों में नहीं है, ये जोड़ा जाए तो अच्छा है। ये बताएंगे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे, तो श्रीमद्भागवत महापुराण है। व्यास जी लिखे हैं 18 महापुराण लिखे हैं, 18 उपपुराण लिखे हैं, उनके नाम भी बताए गए हैं। 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है। तो श्रीमद्भागवत क्या है? महापुराण है। पारमहंस्याम संहिता है, इसकी विशेषता क्या है? ये परमहंसों की संहिता है। हंस और परमहंस है ना, जो हंस होता है वो दूध और पानी का मिश्रण में जो है से दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, आपको दूध पानी का मिश्रण दिया जाए तो दूध पी लो पानी छोड़ दो, आप नहीं कर सकते। हंस जो है दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है ना। इसी को जो परमहंस होते हैं वो भौतिक जगत में माया भी सर्वव्यापी है और कृष्ण भी सर्वव्यापी है। सर्वम मायामयम जगत ये बताएगा, सर्वम मायामयम जगत और सर्वम कृष्णमयम जगत ये भी है। पूरा जगत कृष्ण से व्याप्त है, पूरे जगत माया से व्याप्त है। उसी प्रकार से जैसे दूध भी है पूरे बर्तन में भरा और पानी भी भरा हुआ, उसी प्रकार से कृष्ण और माया का मिश्रण पूरे जगत में है। परमहंस क्या होते हैं? हर जगह कृष्ण को ग्रहण करते हैं और माया को छोड़ देते हैं, तो परमहंस कहलाते हैं। तो परमहंसों की संहिता है श्रीमद्भागवत। किसकी संहिता है? परमहंसों की संहिता है ना। परमहंस पारमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे मनमंत्र अनुवर्णने, मनमंत्रों का अनुवर्णन इस अध्याय में मनमंत्रों का अनुवर्णन हुआ है। मनमंत्रों का वर्णन तो पहले हो चुका है, अनुवर्णन का मतलब है दोबारा उन्होंने वर्णन किया है कुछ उसके कुछ खास बातें हैं जो बताई हैं। चतुर्दशोध्याय 14वां अध्याय पूरा हो गया है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा या मैं प्रश्न करता हूँ। विमोहित आत्मा भी, विमोहित आत्मा भी का मतलब है विमोहित आत्मा वाले। अब आत्मा शब्द का अर्थ हमें समझना है क्या है। आत्मा शब्द का बुद्धि भी होता है, यहाँ पर हम बुद्धि समझ रहे हैं कि उनकी बुद्धि जो है माया के नाम रूप के द्वारा लिंग होते हैं। आत्मा शब्द का शरीर भी होता है और मन भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। आत्मा शब्द के जो है कई अर्थ भी आप बोलते हैं। वो हंस है, परमहंस जो है जैसे हंस होते हैं तो दूध और पानी को अलग कर लेते हैं और कहाँ पर रहते हैं, मान सरोवर में रहते हैं और मोती चुगते हैं। कहते हैं कै हंसा मोती चुगे कै लंघन करी जाए, या तो मोती खाएगा और नहीं तो उपवास रहेगा, कुछ नहीं खाएगा। इसी प्रकार से जो परमहंस होते हैं वो कृष्ण कथा सुनते हैं और दूसरी चर्चा नहीं करते हैं, जो परमहंस हैं। और दूसरे कौवे होते हैं, हंस और कौवे में अंतर है ना, जो कौवे हैं तो उनका तीर्थ स्थान वही होता है जहाँ कूड़ा करकट है, वो तीर्थ स्थान होता है, विष्ठा खाते हैं, कूड़ा बदबू, जहाँ बहुत बदबू आती है आप खड़े नहीं सकते। कौवे जो है वहाँ आनंद लेते हैं, है ना। तो कौवे और हंस की जैसी तुलना होती है उसी प्रकार से जो परम हंस और परम कौवे परम हंस और परम कौवे, है ना। तो परमहंस जो है श्रीमद् भागवत के मान सरोवर में आनंद लेते हैं और मोती खाते हैं, और मोती का मतलब है यहाँ भक्ति के विभिन्न रस हैं। तो भक्ति के जो है अनेक प्रकार के रस हैं, शांत रस, दास रस हैं, इनका आस्वादन करते हैं तो परमहंस है ना। और जो व्यर्थ का साहित्य है, कूड़ा करकट है, कौवे लोग उसमें जाते हैं, परम कौवे तो साहित्य में जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, ये वो मान सरोवर हैं जिसमें स्वच्छ जल है और मोती मिलते हैं। जो कौवे या बगुला, बगुला जो है उस गंदे तालाब में रहते हैं या कीचड़ होते हैं या कीड़े, उनको जो है मिलते खाने को, है ना। तो हंस की तुलना बगुला से भी की जाती है, कभी कौवा से भी की जाती है ना। तो बहुत ही संसार के जो साहित्य है, गंदा साहित्य है वो बगुलों के लिए है, जो कीड़े खाते हैं ना, या कौवों के लिए है जो कूड़ा खाते हैं। तो कौवे कूड़ा खाते हैं, बगुले कीड़े खाते हैं, और जो हंस हैं वो ना कूड़ा खाते हैं ना कीड़े खाते हैं, वो मोती खाते हैं। तो ये जो है परमहंसों की संहिता है। हाँ जी, नहीं, सर दर्शन के बारे में मुझे उतना अभी अभ्यास नहीं है उसका, लेकिन ये समझ दर्शन का मतलब, यहाँ अनेक दर्शन है तो दर्शन का मतलब ये भी है, दर्शन थ्योरी जो वैज्ञानिकों की बिग बैंग थ्योरी, तो भी उनकी थ्योरी है तो उसको भी दर्शन कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की जो है थ्योरियाँ बनाई हैं, तो आजकल नई नई थ्योरी बनाते हैं कि सृष्टि कैसे बनी है, है ना। जैसे थ्योरी है उनकी थ्योरी है कि जितने तारे हैं वो सब बड़े बड़े सूर्य हैं, सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन ये इतने छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत दूरी पर हैं। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो जितने नक्षत्र हैं तारे हैं उनमें चंद्रमा भगवान, तो जैसे चंद्रमा है तो तारों में चंद्रमा, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश है, तो जितने तारे वो भी सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं। तो ये जो है भगवान का सिद्धांत है, उनका सिद्धांत है कि जितने तारे हैं वो सब बड़े बड़े सूर्य हैं, है ना। तो इस तरह की अनेक थ्योरी है, ये भी थ्योरी है उनकी कि हम पैदा हुए हैं, कितनी तारीख को पैदा हुए थे, सन 2054 में, ये 1954 में हम पैदा हुए, 1955 में आप पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, ये थ्योरी है। और फिर वो मर गए, वो जो है वो इतिहास लिखते हैं कि वो इतनी तारीख को पैदा हुए, इतनी तारीख को मर गए, अब ख़त्म, पैदा होने के पहले नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं है, ख़त्म, तो उनकी थ्योरी है ना। तो सब जो है थ्योरी है, विभिन्न प्रकार की थ्योरियाँ हैं, दर्शन हैं जिनके द्वारा वे भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो दर्शन के द्वारा दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन बनाए थे।
त्रिलोक में कहते हैं।
हाँ, अगर मतभेद मिलता है, लेकिन जो वैष्णव आचार्य हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, तो उनकी टीका को हम स्वीकार करते हैं। हम जो है कोई भी टीका लिखते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग हम सिद्धांत निकाल सकते हैं, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है कि कृष्ण ये जो है परमेश्वर हैं, हम सर्वस्व प्रभु जो कृष्ण कहते हैं, तो जो गीता के चार श्लोक जो भगवान ने बोले हैं, है ना, तो वो जो है मूल सिद्धांत है गीता का, जिसको गीता का सार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी सहमत हैं, जितने वैष्णवाचार्य हैं सभी सहमत हैं। तो वैष्णव सिद्धांत तो है ही है, क्योंकि जैसे अचिंत्य भेदा भेद तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, तो ये और ज़्यादा उत्कृष्ट है सिद्धांत, और ज़्यादा उत्कृष्ट है। इससे जो है भगवान की शक्तियों को और अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन बाकी जो वैष्णव सिद्धांत हैं, द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैत है और शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, ये सब सिद्धांत इनका कोई विरोध नहीं है, इनका कोई विरोध नहीं है। विरोधी हम विरोध करते हैं अद्वैतवाद, शंकराचार्य का जो है अद्वैतवाद, है ना। लेकिन वैसे अद्वैतवाद हम भी हैं, अद्वैतम अच्युतम मना दें तो भगवान अद्वैत, शंकराचार्य का अद्वैत वो गलत है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद गलत है कि उनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, कोई है अद्वैत है, या अद्वैत का मतलब है कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, तो अद्वैतवाद हमारा भी है, शून्यवाद हमारा भी है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, तो हम भी शून्यवादी हैं कि कृष्ण के विरह में पूरा जगत शून्य है, सब बेकार है, तो हम लोग भी शून्यवादी हैं। लेकिन जो जो बुद्ध सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत में शून्यवाद है, तो हम उसको नहीं मानते कि इस जीवन के बाद शून्य हो जाता है, जो बौद्ध मत है शून्य हो जाता है, तो हम इसको नहीं मानते। तो गीता के अंदर से हम जो है अनेक अनेक जो है समय स्थान परिस्थिति अनुसार शिक्षाएँ निकाल सकते हैं और अर्थ निकाल सकते हैं, जो कि कृष्ण भावना मत को पुष्ट करने के लिए हैं, तो वो निकाले जा सकते हैं। और कई बार जो है अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन विरोध नहीं है, कई बार उसमें विविधता कह सकते हैं कि विविधता है, वेराइटीज है, लेकिन विरोध नहीं है। और कोई इनका जो है वर्णन आया है इसमें कि जो मनु का जो समय है वो 71 चतुर्युगी का होता है, 71 बार जो है जब युग बीतते हैं तो वो समय होता है। जैसे स्वयंभू मनु, तो स्वयंभू मनु का जो समय था वो पहले मनमंत्र के 71 युगों तक चला, तो उनके वंश में जो राजा होते हैं तो वो राज्य करते हैं। कलयुग में वो सब लुप्त हो जाते हैं वंश, कलयुग में वंश लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि व्यवस्थित मनमंत्र में दो वंश हैं राजाओं के, एक सूर्य वंश और दूसरे चंद्रवंश, ये व्यवस्थित मनु से दोनों निकले हैं, इनका कलयुग में वो लुप्त हो गए हैं। कई चंद्रवंशी राजा हैं, देवापी हैं चंद्रवंशी राजा, जो सत्युग में फिर वो आगे वंश चलाएंगे, और सूर्यवंशी राजा मरुत हैं, तो वो भी कलाप ग्राम में हैं, तपस्या कर रहे हैं, सत्युग आएगा तो फिर वो सूर्यवंश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कलयुग में जो है जो मनु के वंश के जो राजा होते हैं तो वो लुप्त हो जाते हैं, वंश लुप्त हो जाता है, सत्युग से फिर शुरू होता है और उनके जो वंश आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज जैसे मनु के स्वयं मनु के वंश में, और वो गलती कर रहे हैं, यक्षों के साथ युद्ध कर रहे हैं, यक्ष की अनावश्यक हत्या कर रहे हैं, तो स्वयं मनु आ गए, क्या कर रहे हो, तो अपने वंश के राजाओं को जो है जहाँ कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो आ जाते हैं, ठीक है ना। कलयुग में जो है वो वंश सब लुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो नष्ट नहीं है, कुछ भी नष्ट नहीं है, ठीक है ना।
मेरा कुछ विषय से हट के प्रश्न है आज के, जैसे आप बता रहे 18 पुराण है, तो जैसे हम स्मृति है, जैसे स्मृति है तो उसमें क्या कहते हैं पुराणास के बारे में बात करती है, तो हम जैसे गीता को बोलते हैं गीतोपनिषद भी कभी कभी सुनते हैं, गीतोपनिषद सुनते हैं कभी गीता को, गीतोपनिषद बोला जाता है, बड़ी स्मृति का पार्ट है, और जो श्रुति है वो उपनिषद है, श्रुति उपनिषद वेद के बारे में, कोई लोग वेद वाक्य को मानते हैं, तो इस पर मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि गीता तो स्मृति में आ गई, तो फिर
गीता जो है
और फिर एक उसमें फिर बोलते हैं कि इस कल भी चर्चा होती है कि जो ये स्मृति है पंचम वेद कहलाते हैं, बट आधिकारिक रूप से चार वेद के बारे में सुनते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए।
स्मृति प्रभुपाद ने बताया, स्मृति का मतलब है कि जो श्रुतियों के आधार पर कुछ लिखा जाता है और वो श्रुतियों के आधार पर लिखा जाता है तो स्मृति कहलाती है। तो गीता को जो है स्मृति भी कहा जाता है और श्रुति भी कहा जाता है, तो श्रुति का मतलब है जो सुना गया है, तो जो वेद मंत्र हैं ये भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, हाँ, तो वो वेद मंत्र जो है ये श्रुति कहलाते हैं, जो सुने गए केवल, है ना, और स्मृति है जो उनके आधार पर जो लिखा गया शास्त्र। तो गीता जो श्रुति भी है, क्योंकि गीता वेद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदों के द्वारा तो वेद मंत्र तो भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कोई प्रयास नहीं होता है, लेकिन गीता तो भगवान ने अपने मुख से बोली स्वयं, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मनाभ विनिष्ठिता, तो भगवान के जो है साक्षात मुख से निकली है, भगवान ने बोला है, तो वो इसलिए गीता जो है वेदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ ये स्मृति भी है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन का संवाद है और इतिहास में ये घटना घटी, तो स्मृति भी है। तो गीता में ये जो है विशेष सुविधा है कि हम गीता का अध्ययन कर सकते हैं, गीता का अभ्यास कर सकते हैं, हर कोई सबको अध्ययन करने का जो है अधिकार है गीता में, क्योंकि ये जो है स्मृति है, महाभारत का एक अंश है, जबकि वेद मंत्रों में सबका अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी नाम श्रुति गोचरा, तो जो वेद मंत्र हैं उनमें जो है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्रियों का, शूद्रों का और द्विज बंधुओं का अधिकार नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। और यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करने, ब्रह्मचारी आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में ही वेदों का अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते ही वेद मंत्रों का अभ्यास किया जाता है, तो ये सब जो है वेदों के जो है प्रतिबंध हैं, तो गीता में वो नहीं है। तो गीता का जो है आप पाठ बाथरूम में भी कर सकते हैं, आप श्लोकों का अभ्यास कर सकते हैं, तो इसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन जो वेद मंत्र हैं तो उनका उच्चारण आप नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है ना। तो गीता में ये विशेषता है। और कोई किसने हाथ उठाया था? हाँ जी, हाँ प्रदीप भैया बोलो।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भगवान की कृपा से हम यथारूप में भगवान को समझ सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार हम पंजाबी बाग मंदिर में यहीं पे आए थे।
सबको सुनाई पड़ रहा है
प्रवचन?
नहीं पड़ रहा।
प्रभु जी प्रवचन देने आए थे यहीं पर, तो मुझे उस दिन बहुत थकावट लग रही थी, तो मैंने सोचा गाड़ी में मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो हमारे प्रदीप ड्राइवर था वो प्रभु जी का प्रवचन उसने गाड़ी में चला दिया, तो हल्का सा नींद था, फिर खुल गया मेरा हाथ, तो सब जो है यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी तो कुछ बच्चे भी प्रणाम कर रहे थे भगवान को, बारी बार जाते जाते कुछ मथा झुका झुका के जा रहे थे, तो उस वक्त प्रभु जी का प्रवचन चल रहा था, और जब मैंने ये सब सुने उसी वक्त सुने कि भगवान उग्रसेन से कह रहे हैं कि जब सारे देवता देखें कि मैं आपकी सेवा में लगा हूँ तो सारे देवता आपको मथा मस्तक झुकाएंगे, तो इससे भी हम भगवान को समझ सकते हैं कि उस वक्त सभी जो है मस्तक झुका झुका के जा रहे थे, जिनकी श्रद्धा थी उस लोग ऐसे भी जा रहे थे, ऐसे संकेत भगवान के मिलते हैं जिससे पता लगता है कि हाँ उग्रसेन भी थे, भगवान भी थे, इसे आश्चर्य संकेत है, उससे हम एज इट इज समझ सकते हैं। एक और मैं छोटा सा बताता हूँ, प्रभु जी भगवान राम का मंदिर है झांसी में प्रवचन देने के लिए गए थे, प्राचीन मंदिर है, तो बाल रूप में भगवान राम, वहाँ से एक सुगंधी मिली थी जो सेंट हम लगाते हैं ना, तो सेंट प्रभु जी के टेबल पे मैंने रख दी थी, और उस एक डिब्बे में बहुत सारा छोटा छोटा सामान, उसको हाथ लगाना मतलब सफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें रख देती थी। कभी कभी देखते थे उसको, प्रभु जी को सुना देता था, मैं देखता था, रख देता था। एक दिन मैंने सोचा पूरी टेबल की सफाई करनी है, सफाई पूरी टेबल की सबसे लास्ट में उस डिब्बे की सफाई की, एक एक सामान की। और जब मेरे हाथ में वो जब सेंट आई, तो प्रभु जी का प्रवचन चल रहा था, मैंने मशीन में लगा के छोड़ दिया था। प्रवचन भागवतम का ही था, पूतना के उसमें नहीं था। पर अचानक एक प्रश्न उठा किसी का और प्रभु जी ने बताया, देखो पूतना के शरीर से, मतलब जब मैंने वो सेंट उठाई उस वक्त ये बात निकली कि पूतना के शरीर से सुगंधित धुआं निकल रहा था उस वक्त। तो मतलब इससे समझ सकते हैं कि पूतना थी इसका मतलब, तो पूतना थी तो कृष्ण भी होंगे, उल्टा ही समझ लेंगे उसे।
तो भगवान पुष्ट करते हैं,
तो इससे भगवान अपने आप को समझाते हैं कि मैं तो हूँ वैज्ञानिक लोग नहीं।
तो ऐसी घटनाओं के द्वारा जो है भगवान हमें अपना दर्शन देते हैं। यहाँ बताया दर्शन है नजर दृश्यते, तो उनके दर्शनों से भगवान दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन भगवान जो है इस घटनाओं के द्वारा अपना दर्शन देते हैं। जब हम उनकी कथा को यथारूप सुनते हैं, यथारूप सुनाते हैं, तो भगवान के इस प्रकार संकेत मिलते हैं कि हाँ वे हमारे साथ हैं, इस कथा में भगवान हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव।